प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। आज 9 सितंबर 2015 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, मैं साथ ही स्वागत करता हूं अपने उन नौ नौजवान युवा साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं विनीत कुमार मिश्रा इलाहाबाद, सुधांशु अग्रवाल विदिशा, अमिता कुमारी बेतिया बिहार, दिनेश कुमार अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश, रामवीर सिंह गुना मध्य प्रदेश से, जय कुमार गुप्ता जबलपुर से, और तीन मित्र हैं, तीनों देहरादून से हैं, नीलम दानू देहरादून से, पूनम पुंडीर देहरादून से और प्रीति रावत देहरादून से। मुझे लग रहा है कि शायद ये तीनों आपस में सहेली होंगी और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान रही होंगी क्योंकि तीनों ने एक ही साथ एक ही दिन रजिस्ट्रेशन कराए हैं। और मैं इसे एक बहुत अच्छी बात इस मायने में समझता हूं मित्रों कि जब एक ही स्थान का ग्रुप होता है, तीन चार स्टूडेंट होते हैं, या वो एक दूसरे को जानते हों या न भी जानते हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में जानने लगेंगे, यहां से जाने के बाद यहां आने पर जानने लगेंगे, तो वो एक ग्रुप बना सकते हैं और फिर आपस के डिस्कशन के द्वारा अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रूप दे सकते हैं। तो इन तीनों सहेलियों अगर ये हैं, एक दूसरे को जानती हैं और डेफिनेटली जानती होंगी, तो मैं इस उनके इस प्रयास की अलग से प्रशंसा करता हूं। तो मित्रों, विनीत कुमार, सुधांशु, अमिता, दिनेश, रामवीर सिंह, जय कुमार, नीलम, पूनम और प्रीति, आप सभी का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर जो लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज है। और फ्रेंड्स, कल मैं अपने अक्टूबर और फरवरी के बैच में आने वाले स्टूडेंट से ये अपील कर रहा था कि प्लीज वो अपनी मानसिक मजबूती का ध्यान रखें, अपने आप को उसके लिए तैयार करें। और सच ये है कि अभी लाइफ मैनेजमेंट में मैं जो हनुमान चालीसा की बात मैंने शुरू की है वो उनके लिए भी बहुत उपयोगी है कि वे किस तरीके से अपने को तैयार कर सकते हैं। और नो डाउट यह बात उन पर भी उतनी ही लागू होती है, किसी मायने में रत्ती भर भी कम लागू नहीं होती, जो क्लास में नहीं आ रहे हैं लेकिन ऑडियो सुनते हैं या फिर ऑडियो नहीं भी सुनते, क्योंकि ये जो बात है मैं समझता हूं कि एक ऐसा सत्य है जिससे परे कोई भी दूसरा नहीं है। तो दोस्तों, मैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ये जो हनुमान चालीसा की जो पहली लाइन है, इसके बारे में आज आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। मुझे इस लाइन में सच पूछिए तो जो सीखने का, जो लर्निंग का जो सिद्धांत है वो दिखाई पड़ता है। मित्र, शुरू में सामान्य रूप में पढ़ने पर आपको नहीं लगेगा कि इसमें कोई ऐसी बात छिपी हुई है, लेकिन जिसे मैं बिटवीन द लाइंस कहता हूं, जब हम इसकी व्याख्या करेंगे और जो कुछ नहीं लिखा हुआ है उसे पकड़ने और देखने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि वे चीजें वहां हैं। पहली बात मित्रों कि एक दिमाग में आप थोड़ा सा चलिए सोचिए, अपनी तरफ से सोचिए कि जो हनुमान की जो वास्तविक शक्ति है वो क्या है। क्या शारीरिक शक्ति हनुमान की वास्तविक शक्ति है, या मानसिक शक्ति हनुमान जी की वास्तविक शक्ति है, या कोई आध्यात्मिक शक्ति उनकी वास्तविक शक्ति है? बेसिकली वो कौन सी चीज है जिसने हनुमान जैसे चरित्र को बिल्कुल ही एक अलग ही फोरम पर, अलग ही स्टेज पर, अलग ही ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है। मित्रों, शायद इस बात से आपको एतराज नहीं होगा कि उसी काल में जब हनुमान जी हुए और भी दूसरे ऐसे बहुत से लोग थे, उनकी अपनी ही प्रजाति के थे जिनमें बाली थे, सुग्रीव थे, अंगद थे, जो शक्ति के मामले में, शारीरिक शक्ति के मामले में हनुमान से कम नहीं थे, कहीं भी कम नहीं थे, लेकिन जो काम हनुमान जी ने किए वो लोग नहीं कर पाए। तो इससे एक चीज तो पता लगती है कि नहीं, जो शारीरिक शक्ति है वही हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण नहीं है। तो सबसे बड़ा गुण है क्या? मित्रों, जिस दिन आप इस बात को समझ लेंगे, मुझे लगता है कि जीवन की सफलता के बहुत से रहस्यों को आप समझ लेंगे। मैं जो मानता हूं, मैंने अपनी पहली किताब जो सदा सफल हनुमान में भी इसी बात को स्थापित करने की कोशिश की है कि कैसे हनुमान एक ऐसे चरित्र हैं जो हरदम सफल हुए, सदा ही सफल हुए, कभी फेल ही नहीं हुए। ऐसा कैसे होता था, उस रहस्य का उद्घाटन मैंने अपने उस किताब में करने की कोशिश की है। अब दूसरे को मैं जीवन के व्यापक संदर्भ में मैंने लिया है, हनुमान चालीसा को, उसमें जीवन के दूसरे भी व्यापक संदर्भ आए हैं। हनुमान जी की जो सबसे बड़ी ताकत है मित्रों, वो है लर्निंग की ताकत, ज्ञान की पिपासा, ज्ञान की भूख। आपको एक छोटा सा किस्सा मालूम होगा, छोटी सी कहानी मालूम होगी कि जब हनुमान जी को ज्ञान की इच्छा पैदा हुई कि नहीं, मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे कुछ सीखना है, ज्ञानी बनना नहीं, मुझे सीखना है, तो उनकी मां ने कहा कि वो तो सबसे बड़े गुरु तो जो है सूर्य देव हैं, उनके पास तुम जाओ। जब वो सूर्यदेव के पास पहुंचे तो सूर्यदेव ने कहा कि भैया मेरे से सीखना आसान नहीं है, क्योंकि मैं तो लगातार घूमता रहता हूं, एक जगह तो बैठता ही नहीं, क्योंकि अगर मैं एक जगह बैठ गया तो फिर पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, तो मैं तो बैठ ही नहीं सकता, तो तुम फिर मुझसे सीख कैसे सकते हो, ऐसे घुमक्कड़ गुरु से तुम कैसे सीख सकते हो। तो हनुमान जी ने वचन दिया था कि नहीं, मैं आपसे वायदा करता हूं कि जिस तरह से आप घूमते रहेंगे, मैं भी आपके साथ घूमता रहूंगा, और एक पल भी वो नहीं आने दूंगा जब आपका मुख होगा और मेरी पीठ होगी, हमेशा आपके मुख की तरफ मेरा मुख होगा। और तब जब हनुमान जी ने यह वायदा किया, सूर्य देव ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और ज्ञान देना शुरू किया। मित्रों, इसीलिए जो हनुमान है, आप देखेंगे कि उनका एक पैर उठा हुआ रहता है, वो हमेशा परिक्रमा कर रहे हैं, और उस परिक्रमा के कारण ही उनमें वो पराक्रम आया है, और वो जो परिक्रमा है वो शारीरिक नहीं है, वो उस ज्ञान की ताकत है जो सूर्य देव ने उन्हें दिया था। मित्रों, अब यहां एक बात बहुत साफ होती है कि तुलसीदास जी के मन में यह बात तो रही होगी कि जो हनुमान की ताकत है वो वास्तव में ज्ञान की ताकत है। वो ज्ञान मिलता कहां से है? स्वाभाविक है कि वो ज्ञान मिलता है गुरु से, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। इसलिए जब तुलसीदास जी ने अपने जीवन की पहली रचना, ये हनुमान चालीसा उनके जीवन की पहली रचना मानी जाती है, इसके पीछे क्या कथा है, सच्चाई तो नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन जो कथा है वो मैं कभी आपसे चर्चा करूंगा, अभी मैं इसी पर अपने को केंद्रित रखता हूं। तो पहली रचना का जो पहला शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, वो किया श्री गुरु, क्योंकि वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, या कह लीजिए कि वही उन्हीं की देन से हनुमान आज सब कुछ थे जो भी वो उस समय थे बने। इसलिए पहली बार जो उन्होंने पहले शब्द जो याद किया वो श्री गुरु। अब देखिए दोस्तों कि इस पूरी की पूरी लाइन में किस तरह से पूरी की पूरी लर्निंग प्रोसेस को उन्होंने बताया है, और मैं चाहूंगा कि मेरे वे स्टूडेंट जो अक्टूबर और फरवरी के क्लास में आ रहे हैं, मेरे वे स्टूडेंट जो मेरे ऑडियो गाइडेंस को सुन रहे हैं, मेरे वे स्टूडेंट जो नहीं भी सुन रहे, जो कभी कभी सुन रहे हैं, और वे स्टूडेंट भी जो ऑलरेडी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, इसे फिर से एक बार रिमाइंड करें, इसे फिर से दोहराएं और इसे आत्मसात भी करें। मित्रों, जो लर्निंग होती है, याद रखिए, वो ऐसा नहीं कि कोई शरीर के रूप में गुरु बनकर आपके सामने बैठा हो, बता रहा हो, तभी आप लर्न करते हैं। जीवन का हर पल आपको सिखाता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि समय सबसे बड़ा गुरु है। हर समय आप सीखते हैं, परिस्थितियां सिखाती हैं, माता पिता, दोस्त, पड़ोसी, समाज, हर कोई सिखा रहा है, बशर्ते कि हम सीखने को तैयार हों। तो दोस्तों, आप देखें कि लर्निंग की जो सबसे पहली शर्त है वो क्या है, आगे के शब्द देखिए, श्री गुरु, ठीक है, गुरु हैं, चरण सरोज रज, आप श्री गुरु के चरणों में बैठ करके ही सीख सकते हैं। और चरणों में आप कैसे बैठना है, ये थोड़ी है कि गुरु जी पालथी मार करके बैठे हैं और उनके एक आसन पर बैठ गए हैं या चौकी पर बैठ गए हैं और उनके चरणों के नीचे आप पालथी मार करके बैठ गए हैं और श्री गुरु चरण सरोज हो गया। नहीं मित्रों, चरणों में बैठना एक मनोवैज्ञानिक बैठना है। आप मन से चरणों में बैठे हुए हैं। ये जो चरण शब्द का यहां इस्तेमाल किया गया है, ये समर्पण के भाव के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसे मैं अपने शब्दों में लगातार आप लोगों से कहता रहता हूं कि अपने को खाली करके आइए। अगर आप ईगो को लेकर के गुरु के सामने बैठे होंगे मित्रों, कभी भी आप लर्न नहीं कर सकते। जिसे एक फिलॉसफर ने कहा है कि भरी हुई चाय की प्याली में और चाय उड़ेली नहीं जा सकती, आएगी ही नहीं, जगह ही नहीं है। तो गुरु के सामने जब आप बिल्कुल समर्पित भाव से जाते हैं, और देखिए दोस्तों, समर्पित भाव के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है कि जो गुरु का चरण है तो बहुत प्यारा, बहुत पवित्र, कमल की तरह सरोज। सरोज का मतलब है, याद रखिए, वो पंकज नहीं है, वो कीचड़ में खिला हुआ कमल नहीं है, पंकज, पंक में जो जन्म लेता है, नहीं, ये जो कमल है ये सर में खिले हुए कमल है, पानी में खिले हुए कमल है, इतने पवित्र हैं, शुद्ध हैं, साफ सुथरे हैं, सरोज है ये पंकज नहीं है। और फिर रज, ये रज क्या है, भले ही वो पैर धूल से सने हुए क्यों ना हो, मतलब वो जो कमल चरण, चरण रूपी कमल है, कमल का फूल है, वो धूल में ही सना हुआ क्यों ना हो, लेकिन वहां आपको पूरे समर्पित भाव से बैठना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुरु हैं वो किस परंपरा के हैं, किस जाति के हैं, कितने पैसे वाले हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना जानते हैं, कितने प्रसिद्ध हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ सिर्फ इसका है कि आप गुरु मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। अगर आप गुरु मान रहे हैं तो खत्म, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, और आप नहीं मान रहे हैं तो फिर वो पचासों सरोज क्यों ना हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मित्रों, श्री गुरु चरण सरोज रज, इसका मतलब हुआ कि जब भी आप गुरु के चरणों में बैठें, जिससे भी आपको लर्न करना है, जहां भी सीखने का थोड़ा सा अवसर मिलता है, हमेशा याद रखिए कि अपने को पूरा समर्पित कर दीजिए, अपने को पूरा खाली कर दीजिए, उड़ेल दीजिए और कह दीजिए कि मैं तो कुछ नहीं जानता। आपके कह देने भर से ऐसा नहीं है कि आपके अंदर की सारी चीजें खाली हो जाएंगी। आपके अंदर जब यह भाव पैदा होगा तो आपकी जो रिसीविंग पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब रिसीविंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मित्रों, तो होगा वही, कहा जाएगा एक और आप समझेंगे ग्यारह, अदरवाइज कहा जाता है ग्यारह और समझ में नहीं आता है एक भी, और यदि कभी एक भी समझ में आ गया तो पता लगा कि जो समझ में आया है वह कहा ही नहीं गया था। और नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि जब आप प्री में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, ये सही है, वो सही है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो वही तो बात है, क्योंकि जो कहा गया था उसको आपने सही तरीके से रिसीव नहीं किया है, उसमें आपका अपना ज्ञान शामिल हो गया है, उसमें आपने दुनिया भर की अपनी चीजें शामिल करके उसको पॉल्यूट कर दिया है, उसको प्रदूषित कर दिया है, जिसके कारण वहां उस समय भ्रम की स्थिति आ गई है। तो दोस्तों, मन मुकुर सुधार, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा, लेकिन ज्ञान क्या है, अपने मन रूपी दर्पण को सुधारना है। जो ज्ञान है वो सीधे सीधे फिर से जो लर्निंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आपके मन से जुड़ा हुआ है, और यहां तुलसीदास जी ने मन की जो तुलना की है या मन को जो उपमा दी है वो दर्पण से दी है। इसके बारे में कल मैं आपसे चर्चा करूंगा मित्रों, और बड़ा आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी मैं इसको इसमें समय ले रहा हूं क्योंकि आपके ये लर्निंग प्रोसेस से संबंधित है और आप सब अभी लर्निंग के ही प्रोसेस से गुजर रहे हैं। मित्रों, अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर, कल की AIR की खबरों पर। मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि आपने निश्चित रूप से आकाशवाणी के समाचार सुने होंगे और इस बारे में आप अब तो कम से कम कोई कोताही नहीं बरत रहे होंगे, इसलिए क्योंकि मैं लगातार आपको आकाशवाणी के समाचार कैसे सुनने चाहिए, वो समाचार सुनने के बाद आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, और फिर आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं हमेशा कोशिश मेरी रहती है कि मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह से ये डायरेक्ट आपके काम का है, जिसमें मैं कभी प्री के क्वेश्चंस ले लेता हूं, कभी मैं मेंस के क्वेश्चंस ले लेता हूं। मित्रों, यदि इसके बाद भी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा होगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं लाचार हूं, क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे पास और दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोस्तों, सच पूछे तो कल के आकाशवाणी के समाचार में ऐसा कोई समाचार नहीं था जिसको लेकर के मैं कहूं कि इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसी तरह से, जैसे कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, ऐसा भी कुछ नहीं था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि कुछ भी नहीं था जिसे हम हवा में उड़ा दें। देखिए, जो सबसे बड़ी खबर है, जो सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग इस ऑडियो गाइडेंस में बात करते हैं मित्रों, वह खबर थी कल प्रधानमंत्री जी ने कुछ उद्योगपतियों के साथ बैठक की, राइट। उसमें हमारे देश के कुछ उद्योगपति थे, बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, अलग अलग सेक्टर के जो हैं, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर थे, खासकर जिनका संबंध आर्थिक क्षेत्रों के मंत्रालयों से है, और साथ ही साथ अर्थशास्त्री भी थे, हमारे इकोनॉमिस्ट भी थे। और खासकर ये जो बैठक की गई थी, इस नजरिए से की गई थी कि पूरे विश्व में अब जो एक मंदी कि जो एक आशंका दिखाई दे रही है, खासकर चाइनीज इकोनॉमी के कारण, उसका कैसे मुकाबला किया जाए, नंबर एक, और दूसरा है कि कैसे इसको अपनी अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया जाए। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप प्रधानमंत्री जी ने लिया कि जो ऑलरेडी जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत की जाए, क्योंकि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं या हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट में कुछ तो सलाहकार ही होते हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमी के एडवाइजर ही होते हैं, उनसे तो प्रधानमंत्री कभी भी बात कर सकते थे, अकेले भी बुला करके बात कर सकते थे और बात होती ही रहती है। लेकिन सबने मिलकर जो 3 घंटे तक बातचीत की, और खासकर प्रैक्टिकल क्षेत्र की बातचीत की, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी। मित्रों, अब आप देखिए कि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो एक बात तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, जो मैं हमेशा बताता भी रहता हूं और जानबूझकर फिर दोहराता भी रहता हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए, वो ये कि जनरल स्टडीज के जितने भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, आपको जो पढ़ने हैं, वो सारे के सारे बेहद अप्लाइड किस्म के होते हैं, बहुत ही व्यावहारिक किस्म के होते हैं, और उनका संबंध कहीं ना कहीं आप मान करके चलिए कि करंट अफेयर से होता है। अगर आप उन करंट अफेयर्स की चीजों को बहुत अच्छे से पकड़ लें, ध्यान के साथ, सतर्कता के साथ, और उनकी बैकग्राउंड की थोड़ी सी तैयारी कर लें, तो आप देखेंगे कि इसी जनरल स्टडीज के पेपर पर आपकी कितनी जबरदस्त कमांड हो जाएगी। और खासकर मेंस में जो जनरल स्टडीज के पेपर्स होते हैं, जिसमें मुश्किल से 250 में स्टूडेंट 100 नंबर ला पाते हैं, मुश्किल से, ले देख, बहुत कठिन हो जाता है उनके लिए 100 नंबर ला पाना, वो आपके लिए कैसे, मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट 50% स्कोर देने वाला बन सकता है। और जनरल स्टडीज में अगर आप 50% स्कोर करते हैं, मेंस की बात मैं कर रहा हूं, तो एक बहुत बड़ी बात है, और नो डाउट कि प्री में भी एक बड़ी बात है। लेकिन मित्रों, अगर आप एक रणनीति बना करके चलेंगे तो स्कोर करना मुश्किल नहीं होगा। अभी दिसंबर में एग्जाम होंगे, तब आप जनरल स्टडीज के पेपर उठा करके देख लीजिएगा, और जो पिछले ऑलरेडी हो चुके हैं उन्हें देख लीजिए, नए पैटर्न पर कम से कम 2 बार के एग्जाम तो हो चुके हैं। आप देखेंगे कि सब में एक आपसे एक एनालिसिस मांगी जाती है, और उस एनालिसिस का संबंध हमारी प्रेजेंट सिचुएशन से होता है और बड़ी ही व्यावहारिकता से होता है। और अगर हम कल की जो मीटिंग हुई है उसको एनालिसिस करें या उसको अपनी सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप देखेंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बहुत से व्यावहारिक बिंदु हमें उसमें दिखाई देते हैं, बहुत ही व्यावहारिक बिंदु बहुत स्पष्ट तरीके से उसमें डिस्कस हुए हैं। जैसे 3-4 पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको पता लग सके, तैयारी का पैटर्न पता लग सके, है ना। मैं अर्थव्यवस्था की बात नहीं करने जा रहा हूं। जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब प्रभाव तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी अपनी जो अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो फर्क पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा, लेकिन हमारी जो फाउंडेशन है, जो हमारी इकोनॉमिक इंटरनल इकोनॉमी सिचुएशन है, वो बहुत स्ट्रांग है। अब इस पर आपको फिर सोचना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही एक जुमला कह दिया है, या इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी बात है, सोची समझी रणनीति है, सोचा समझा तथ्य है। डेफिनेटली अगर फाइनेंस मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं, है ना, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, तो इसके पीछे एक लॉजिक है, रीजनिंग है, रीजंस हैं तथ्य हैं। तो मित्रों प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव क्या पड़ेगा, मुझे न्यूज में ये बात नहीं थी, अगर आप इसको आज के खबरों से सप्लीमेंट कर लेंगे। देखिए मैं इसलिए कहता हूं कि न्यूज के साथ फिर आपको अखबार भी पढ़ना है, तो जब आप अखबारों में इसको ढूंढेंगे तो आप देखिए कि कुछ पॉइंट्स बहुत क्लियर आए हुए हैं, और उसमें जो पड़ेगा वो ये है कि उस पूरी की पूरी मीटिंग में इस बात पर सभी एग्री कर रहे थे कि निर्यात को बढ़ाना अब शायद उतना संभव नहीं होगा, हम एक्सपोर्ट को अब नहीं बढ़ा सकेंगे उतना उस सीमा तक, बटने चल रहा है उसका कारण है। कारण यह है, एक तो पूरी की जब मंदी आएगी तो पूरी की पूरी दुनिया में जब मंदी आएगी तो फिर हमारा सामान खरीदेगा कौन, जब सामान नहीं खरीदेगा तो फिर आप निर्यात कैसे करेंगे। और दूसरा यह कि चूंकि चीन अपनी मुद्रा का बहुत ज्यादा अवमूल्यन कर चुका है, आप देख रहे हैं कि उसी के समानांतर हमारी भी मुद्रा का लगातार अवमूल्यन होता जा रहा है, तो या तो चीन से कंपटीशन करने के लिए हम अपनी मुद्रा का एकदम अवमूल्यन होने देते चले जाएं, जिसको लेकर के अब सरकार ने थोड़ी सी चिंता भी व्यक्त की है, आपने अगर आज के अखबारों को ध्यान से पढ़ा हो तो एक सीमा के बाद तो हम अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं होने दे सकते, क्योंकि तब तो भारत को और ये पता लगा कि पासा उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि हम जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए महंगे हो जाएंगे, पेट्रोलियम पदार्थ हमारे लिए विश्व मार्केट में तो सस्ता है लेकिन उसके लिए हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसके दूसरे भी प्रभाव होंगे ना, जो विदेशी निवेशक जो अपना पैसा यहां से ले जाना चाहेंगे तो वो तो बट नेचुरल है कि वो रुपया देंगे और डॉलर मांगेंगे, तो इस तरह से बहुत सी चीजें संकट में आ जाएंगी, बहुत से संकट में आ जाएंगे, तो हम एक सीमा के बाद अपनी मुद्रा का भी अवमूल्यन नहीं होने दे सकते, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि निर्यात को बढ़ाना बहुत ज्यादा संभव नहीं होगा, यह प्रभाव पड़ेगा। तो फिर अब किया क्या जाए, तो हमारे जो अपने फाउंडेशन स्ट्रांग हैं, इसके बारे में आप ध्यान दीजिए कि 15 दिन पहले शायद मैंने बहुत विस्तार से आपसे चर्चा की थी, इसलिए मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मित्रों जो डेली ऑडियो गाइडेंस है या डेली न्यूज है या डेली न्यूज पेपर है, अगर आप सतर्क होकर के सुनते हैं तो आप देखिए कि कैसे क्रमशः आपकी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो लगातार स्ट्रांग होती चली जाती है और इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर धीरे से आपके दिमाग में पावर ऑफ रीजनिंग पैदा होता है, एनालिटिकल पावर पैदा होते हैं। तो मैं अब उस पर नहीं जा रहा हूं कि हमारे कैसे फाउंडेशन स्ट्रांग हैं, लेकिन अब आप देखिए हम उस पर देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया, जो एक्सपेक्टेशन जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट से की, उन क्या की उन्होंने कि बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आप सब, तीन बातें उन्होंने कही कि छोटे उद्योगों में निवेश कीजिए, जो बड़े बड़े उद्योग तो लग चुके हैं, अब छोटे उद्योगों में निवेश कीजिए, कि छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं, क्यों, क्योंकि जो छोटे उद्योग होंगे डेफिनेटली पहली बात यह होगा कि वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नहीं होते हैं, छोटे उद्योग हाई अगर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नहीं है तो स्वाभाविक रूप से उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि वो सीधे सीधे लोगों के श्रम पर आधारित होंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और हमने जो कौशल विकास का सारा अब जो स्किल डेवलपमेंट की जो मुहिम चला रखी है तो हम उनमें स्किल तो डेवलप कर देंगे, लेकिन अगर स्किल डेवलप करने के बाद हम उन्हें काम नहीं दे पाए तो क्या होगा, फिर से अनरेस्ट पैदा होगा। देखिए दोस्तों, अभी जो गुजरात में जो एक पाटीदार समुदाय ने जो आरक्षण की मांग की है, इससे इकोनॉमिस्ट इस बात को लेकर के चिंतित हुए हैं कि इस बीच में गुजरात का विकास खूब हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन खूब हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा संकट यह हुआ कि रोजगार के अवसर निर्मित नहीं हुए, तो जब रोजगार के अवसर निर्मित नहीं होंगे तो फिर ये यंग जनरेशन क्या करेगी, कहेगी कि भाई हमको नौकरी दो, आरक्षण दो, फलाना करो, ये सारे संकट पैदा होंगे। तो प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये बात बहुत स्पष्ट है कि अगर हम अपने लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकेंगे तो एक संकट होगा, संकट पैदा होगा, इसीलिए उन्होंने सीधे सीधे कहा कि छोटे उद्योगों में निवेश करें, साथ ही उन्होंने कहा कि कौशल विकास के लिए भी निवेश करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड करने के लिए आगे आए, डेफिनेटली इससे रोजगार निर्माण की स्थिति बनेगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, जो पूरे के पूरे डिस्कशन से जो निकल करके आई है और मैं समझता हूं कि जो बहुत बड़ी बात है वो आपको भी जाननी चाहिए, क्योंकि ये आपको एक पैरामीटर देगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आप कैसे कोई अपने मौलिक विचार दे सकें, अपना एक मत स्थिर कर सकें। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि यहां तक कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने भी ये बात कही कि अब कृषि उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो सही मायने में काफी पुअर है, हालांकि 5 ईयर्स प्लान जो बनते हैं, योजना आयोग जो बनाता था, उसमें यही कहा गया कि भारत को कृषि क्षेत्र में 4% की ग्रोथ होनी चाहिए पर ईयर, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, 2.something केवल इसी ग्रोथ पे रह जा रहे हैं, मतलब जो ग्रोथ होनी चाहिए उसके आधे पर हम रह जा रहे हैं। और फिर जब इस तरह के मानसून की स्थिति आती है, जैसे इस बार थोड़ी सी खराब हो गई है, तो फिर हमारी वो ग्रोथ और कम हो जाती है। तो कृषि उत्पादकता पर जोर देने का मतलब है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास किया जाए। देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि अभी भी हमारी पॉपुलेशन की लगभग 60% आबादी, लगभग गांव में है। तो गांव में हमारे पास कितना बड़ा मार्केट है, लेकिन मुश्किल यह है कि उस मार्केट को टैप करना मुश्किल है, वहां तक हमारे पास साधन नहीं है पहुंचने के, वहां मार्केट नहीं है, दूसरी उनकी क्रय शक्ति नहीं है कि वो चीजों को खरीद सकें। तो जब ऐसी स्थिति है और आपको चीजें बेचना है, अपने लिए मार्केट तलाश करना है, और विदेशों में अब हमारे लिए मार्केट उतना दिखाई नहीं दे रहा है, जो मैंने अभी कहा कि निर्यात बढ़ाने की संभावना कम है, तो ऐसी स्थिति में आप जो नए बाजार ढूंढेंगे वो नए बाजार कहां होंगे? वो स्वाभाविक रूप से वो नए बाजार ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे, और वो बाजार में तभी तब्दील हो सकेंगे जब आप कृषि की उत्पादकता बढ़ाएंगे। तो मित्रों, एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि कृषि की उत्पादकता पर ध्यान दिया जाए, यानी कि अब देखते हैं कि सरकार इसे किस रूप में लेती है। और फिर उद्योगपतियों ने यह भी मांग की है कि जो ब्याज की दर है हमारे यहां, ब्याज की दर कम की जाए। वो डेफिनेटली जब रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जब डिक्लेयर करती है तो ब्याज की दर कहीं ना कहीं उसी से जुड़ी हुई होती है। तो मित्रों, अब आप देखें कि एक छोटी सी एक बात थी जो न्यूज सुनने में एक सामान्य सी ही लगती है, लेकिन उसी को लेकर के आप कैसे, अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में चले जाते हैं, थोड़ा सा वक्त लगाते हैं और इकोनॉमिक्स की कोई भी किताब उठा करके इसे समझने की कोशिश करते हैं, या यदि आप दो चार दोस्त हैं तो आपस में डिस्कशन करने लगते हैं, तो आपके सामने अभी जो हमारे अर्थव्यवस्था का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिर आपके दिमाग में किसी तरह का कोई भ्रम नहीं रह जाता। और मुझे लगता है मित्रों की आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो यदि इस पैटर्न पर होती है तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन मैं ये कहने की गलती बिल्कुल नहीं करूंगा कि तैयारी करने का एकमात्र रास्ता यही है, मित्रों मैं यह भी नहीं कहता। दोस्तों, इसके बाद आज न्यूज में और कुछ खास नहीं थी। अब मैं रेडियो न्यूज की बात खत्म करता हूं। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स पर। दोस्तों, न्यूज़पेपर्स में भी कुछ ऐसी बड़ी बहुत अच्छे आर्टिकल्स या खबरें नहीं हैं जिनके बारे में आपसे मैं डिस्कस करूं। इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल कमेंट है, खासकर AFSPA के बारे में, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ये खासकर जहां इंसर्जेंसी की स्थिति इस तरीके की सी चल रही है, जैसे मणिपुर में संकट है, जम्मू कश्मीर में संकट है, आतंकवादी गतिविधियां या उग्रवादी संगठन, तो वहां कंट्रोल करने के लिए आर्मी को एक स्पेशल पावर दिए गए हैं, उनको लेकर के एक एडिटोरियल कमेंट है, तो उसको आप देख लीजिएगा। उस पर मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं। मित्रों, मैं आज थोड़ी सी चर्चा आपसे बहुत संक्षिप्त में इस बात पर करना चाहूंगा कि आज का आपके अखबार अगर आपने देखे हो तो उसमें फुल पेज या कह लीजिए हाफ पेज ऐड है कि आज इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जा रहा है। ये सीधे सीधे प्रश्न आपसे इस अभी के प्री में पूछा भी गया था कि ये पुरस्कार किसको दिया गया है, और आज हमारे राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी उस समारोह में हैं और राष्ट्रपति ये पुरस्कार इसरो को देंगे, राइट? तो अगर आप सतर्क रहते हैं तो देखिए आपका तुरंत पता लग गया कि ये पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। मित्रों, मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा अवसर है जबकि आप इसरो के बारे में पढ़ सकें, और इसके बारे में मैंने आपसे कल चर्चा भी की थी कि प्राइम मिनिस्टर ने किस तरीके से इसरो के प्रोग्राम में जाकर के और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनसे इस बात की अपील की थी कि ये जो संगठन है ये अब लोगों के लिए काम करे, गरीबों के लिए, और प्रौद्योगिकी को जन जन तक पहुंचाया जाए। मित्रों, उसको लेकर के आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, उसमें ये बताया है उन्होंने बहुत अच्छा कि किस तरीके से जो लगभग जो 60 मिनिस्ट्रीज हैं वो 60 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को इसरो ने आइडेंटिफाई किया है, और उनके साथ मिलकर 170 ऐसे प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन पर वो काम करेगा, और फिर स्पेशल बूस्ट के अंतर्गत उन्होंने बकायदे एक लिस्ट सी दी हुई है कि जो इसरो है वो किन किन क्षेत्रों में मदद कर सकता है, जिसमें कुछ दिए हुए हैं कि गंगा के जो सफाई का जो अभियान चल रहा है उसमें जो नदी के जो का जो क्षेत्र है उसकी पूरी मैपिंग करेगा, पूरे जो उसका पूरा का पूरा जो बेसिन है गंगा का उसकी मैपिंग करेगा, यहां उसकी मैपिंग करेगा, जो क्रॉप फोरकास्टिंग होती है कि कितना अनाज उत्पादन होगा उसके बारे में भी ये आंकड़े प्रोवाइड कर सकता है, फिशरीज जो जोन है जहां मछली मछलियां हो सकती हैं उसके बारे में उनकी पोटेंशियल है उनमें कितनी क्षमता है उसकी वो पहचान कर सकता है, वेस्टलैंड डेवलपमेंट में इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, शहरों के लिए ये मास्टर प्लान तैयार करने में मदद करेगा, आंकड़े प्रोवाइड करेगा, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश के जो हैं उनके बारे में ये हमें जानकारी देगा, डेटा प्रोवाइड करेगा, इसी तरह से एनवायरमेंट का क्या इंपैक्ट हो रहा है पूरे के पूरे देश पर इसके बारे में बताएगा। अब बहुत से ऐसे फील्ड हैं, मतलब 170 हैं आप समझ लीजिए, जिस पर अब इसरो ने काम करना शुरू कर दिया है। तो मित्रों मुझे लगता है कि फिर से आपके पास आज एक अच्छा अवसर है जब आप इसरो के बारे में जानकारी लें कि कब यह संगठन बना था। 15 अगस्त देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1969 में इसका गठन किया गया था। इसका मोटो ही है, जो उद्देश्य है कि मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष विज्ञान, ये इसका मोटो है। और इसने ये जो इसका जो मैनेजमेंट है, जो देखता है, देखने वाली जो का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ही है। और याद रखिए मित्रों के जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत है इसीलिए जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है वो डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को देता है, मतलब इसके प्राइम मिनिस्टर से सीधे इसका संबंध होता है, किसी कोई दूसरा मंत्रालय इस बीच में नहीं आता। और चंद्रयान के बारे में तो आपने सुना होगा कि चंद्रयान जो छोड़ा गया था 2013 में उसको छोड़ने वाला इसरो ही है। आर्यभट्ट सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट छोड़ा गया था, इसके बाद रोहिणी छोड़ा गया और अब हम विदेशों के भी बहुत से सैटेलाइट लॉन्च करने की स्थिति में आ गए हैं। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके जो फाउंडर रहे हैं वो हमारे देश के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई रहे। तो इस तरह से जब आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डेफिनेटली दोस्तों आपकी तैयारी में मैं समझता हूं कि जो आपका जो अनसॉल्व पेपर होता है वो तो बहुत मदद करता ही है। और अगर अभी जो अगस्त में एग्जाम हुआ है उसका एक क्वेश्चन आप उठा करके देखें तो उसमें क्लियर कट दिया हुआ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS सैटेलाइट्स यूज्ड। फिर उसमें 5 उन्होंने क्षेत्र दिए हुए हैं, असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सेकेंड दिया है लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, थर्ड दिया है मिनरल एक्सप्लोरेशन, फोर्थ दिया है टेली कम्युनिकेशंस और फिफ्थ दिया हुआ है ट्रैफिक स्टडीज। ये दिया हुआ है कि इसमें इंडियन रिमोट सेंसिंग इसमें से किन किन क्षेत्रों किस किस एक्टिविटीज के लिए मदद कर रहा है। तो मित्रों जब इस तरीके से हम तैयारी करते हैं तो यही सारी बातें जो बाद में थोड़ी सी कठिन और उलझाव वाली लगती हैं, कुछ अजूबे से भी लगने लगती हैं, सच पूछे तो हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो मित्रों न्यूज़पेपर्स के बारे में इतना ही। अब मैं बिल्कुल अंतिम चरण पर आता हूं और जो मेल का चरण है, बहुत से मेल आए हैं, उन सबका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं में कुछ दोस्तों के नाम हैं, दिव्येश पांचाल, गोपाल प्रसाद समस्तीपुर बिहार से, शुभांकर मंडोल, रचना बिंदल, सुनील कुमार सीकर राजस्थान से, सेजल कुमार राजकोट गुजरात से, अधिकरण और डॉक्टर दुर्गेश कुमार मिश्र नई दिल्ली से, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो मित्रों इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है, अब वो कह रहा है कि इसे समाप्त किया जाए, तो अब मैं इसे आप सबकी इजाजत से समाप्त कर रहा हूं। कल फिर हम सब मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।